एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की कह सकते हैं तहों में उतरेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े सामाजिक फैसलों तक हर जगह मौजूद है, रिस्क यानी रिस्क।
नमस्कार, और इस सफर में हमारी गाइड होगी बारूक फिशॉफ और जॉन काडवानी की किताब रिस्क, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब सिर्फ जोखिम क्या है ये नहीं बताती, बल्कि ये भी खोलती है कि हम इंसान जोखिम के बारे में सोचते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं, और क्यों अक्सर विशेषज्ञ और आम लोग मतलब एक ही जोखिम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं।
वाकई, और ये समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है ना। हम हर दिन जोखिम भरे फैसले लेते हैं, अपनी सेहत को लेकर, पैसों के निवेश को लेकर, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएं, यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े खतरों के बारे में सोचते हुए भी। पर सवाल यह है कि क्या हम इन जोखिमों को सही ढंग से समझ पाते हैं? ये किताब इसी समझ को बेहतर बनाने का एक जरिया है। ये दिखाती है कि जोखिम सिर्फ गणित का सवाल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, समाज और संवाद का भी मसला है।
बिल्कुल, ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम जोखिम को सिर्फ आंकड़ों के चश्मे से देखना बंद करें और उसके मतलब मानवीय पहलू को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को और देखते हैं कि लेखक हमें जोखिम की इस जटिल दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं।
तो सबसे पहले इन लेखकों से ही थोड़ी जान पहचान कर ली जाए। बारूक फिशॉफ,
हाँ,
ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और निर्णय विज्ञान यानी डिसीजन साइंस और जोखिम विश्लेषण के क्षेत्र में दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों में से एक हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी पृष्ठभूमि मनोविज्ञान में है। इन्होंने अपनी पीएचडी इसी पर की है कि लोग जोखिम को कैसे समझते हैं, कैसे महसूस करते हैं, जिसे रिस्क परसेप्शन कहते हैं।
और उनका काम सिर्फ अकादमिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने अमेरिका की कई महत्वपूर्ण सरकारी समितियों जैसे कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA इनके लिए सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। उनका जोर हमेशा इस बात पर रहा है कि जोखिम से जुड़े फैसलों में इंसानी सोच और भावनाओं की भूमिका को समझा जाए।
और उनके साथ है जॉन काडवानी। इनकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है जो इस किताब को और भी दिलचस्प बनाती है।
हाँ,
रहे हैं उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा है कि वैज्ञानिक तर्क कैसे काम करता है, जोखिम का विश्लेषण करने के लिए जो मॉडल बनाए जाते हैं उनकी बुनियाद क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं। वो एक तरह से ज्यादा बुनियादी सवाल पूछते हैं कि जोखिम आखिर है क्या और हम इसके बारे में कितना पुख्ता तौर पर जान सकते हैं।
और यही जुगलबंदी आप कह सकते हैं इस किताब की खासियत है। एक तरफ फिशॉफ का मनोवैज्ञानिक नजरिया कि इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरी तरफ काडवानी का ज्यादा तार्किक और दार्शनिक नजरिया कि विश्लेषण के तरीके कितने भरोसेमंद हैं। ये कॉम्बिनेशन उन्हें जोखिम के तकनीकी और मानवीय दोनों पहलुओं को गहराई से समझने और समझाने की एक अनोखी क्षमता देता है। ये सिर्फ आंकड़ों या सिर्फ भावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलते हैं।
तो अब आते हैं इस किताब के मूल विचार पर। अगर एक लाइन में कहना हो तो किताब का सार ये है कि जोखिम कोई बाहरी वस्तुनिष्ठ चीज नहीं है जिसे बस नाप लिया जाए, बल्कि ये एक जटिल मानवीय और सामाजिक सच्चाई है जिसे वैज्ञानिक विश्लेषण, हमारी अपनी सोच और डर, सामाजिक मूल्य और हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये सब चीजें मिलकर आकार देती हैं।
बिल्कुल सही कहा। लेखक ये तर्क देते हैं कि जोखिम को प्रभावी ढंग से समझने और संभालने के लिए हमें कई अलग अलग नजरियों, विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, यहाँ तक कि नैतिकता को साथ लाना होगा। सिर्फ तकनीकी विश्लेषण काफी नहीं है। वे कहते हैं कि अक्सर जोखिम प्रबंधन में जो बड़ी विफलताएं होती हैं वो इसलिए नहीं होती कि हमारे पास पर्याप्त डेटा या तकनीकी ज्ञान नहीं था, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हमने मानवीय पहलू को नजरअंदाज कर दिया, हमारी अपनी सोचने की सीमाएं, सामाजिक गतिशीलता या फिर संवाद में हुई चूक।
और किताब एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो है विशेषज्ञों के जोखिम आकलन और आम जनता की जोखिम की समझ के बीच का गहरा फासला। विशेषज्ञ शायद आंकड़ों और संभावनाओं पर ध्यान दें, लेकिन आम लोग शायद इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि क्या ये जोखिम जाना पहचाना है, क्या इस पर उनका कोई नियंत्रण है, क्या इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं।
हाँ, ये फर्क बहुत बड़ा है।
और इस फासले की वजह से अक्सर गलतफहमियां पैदा होती हैं, नीतियां प्रभावी नहीं हो पाती और कई बार ऐसे संकट खड़े हो जाते हैं जिन्हें बेहतर संवाद से टाला जा सकता था।
तो ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है ये शुरू होती है इस बुनियादी सवाल से कि जोखिम है क्या। फिर ये पड़ताल करती है कि व्यक्ति और समाज जोखिम का आकलन कैसे करते हैं, उसे महसूस कैसे करते हैं और उसे प्रबंधित करने की कोशिश कैसे करते हैं। इसमें तकनीकी विश्लेषण के तरीकों की भी चर्चा है और मानवीय धारणाओं के मनोविज्ञान की भी। और अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक जोखिम के बारे में ज्यादा स्पष्टता से सोच सकें और अनिश्चितता भरी इस दुनिया में बेहतर फैसले ले सकें।
चलिए अब किताब के कुछ मुख्य अध्यायों और विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जोखिम आखिर है क्या? व्हाट इज रिस्क? हम अक्सर सुनते हैं कि जोखिम का एक सीधा साधा फॉर्मूला है, रिस्क इज इक्वल्स टू संभावना गुणा परिणाम, यानी किसी बुरी घटना के होने की कितनी संभावना है और अगर वो होती है तो उसका नतीजा कितना बुरा होगा। सुनने में तो ये बड़ा तार्किक लगता है ना?
हाँ, लगता तो है, पर लेखक तुरंत इस सादगी पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये फॉर्मूला असल में कई जटिलताओं को छुपा लेता है। जैसे परिणाम का क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ मौतों की गिनती कर रहे हैं या चोटें, आर्थिक नुकसान, पर्यावरण को क्षति या फिर लोगों पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक तनाव, इन सबको भी शामिल करना है? और अगर करना है तो इन अलग अलग तरह के परिणामों को हम कितना वजन देंगे? कौन तय करेगा कि आर्थिक नुकसान ज्यादा बुरा है या मानसिक तनाव?
ये तो बहुत अहम सवाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जोखिम की परिभाषा तय करना ही अपने आप में एक व्यक्तिपरक काम है जिसमें हमारे मूल्य और प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में बस मौजूद है और हमें उसे खोजना है, बल्कि ये एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अनिश्चित भविष्य से निपटने और फैसले लेने के लिए बनाते हैं। और यही परिभाषा ही तय कर सकती है कि हम किस चीज को समस्या मानते हैं और किसे नहीं।
इसके बाद किताब हमें जोखिम के विश्लेषण, द एनालिसिस ऑफ रिस्क की दुनिया में ले जाती है, यानी वो तरीके जिनका इस्तेमाल विशेषज्ञ जोखिम को मापने और समझने के लिए करते हैं। यहाँ कई तरह के तरीके आते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों या बड़े केमिकल प्लांट की सुरक्षा का आकलन करने के लिए प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट का इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें हजारों संभावित तरीकों को देखा जाता है जिनसे कोई चीज गलत हो सकती है और हर एक की संभावना का अनुमान लगाया जाता है। ये एक तरह से हर छोटे बड़े पेच के ढीले होने की संभावना का हिसाब लगाने जैसा है।
हाँ, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी और विश्वविज्ञान टॉक्सिकोलॉजी का इस्तेमाल होता है ये देखने के लिए कि कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, उनके कारण क्या हैं या कोई केमिकल सेहत के लिए कितना खतरनाक है। और फिर वित्तीय दुनिया है जहां आर्थिक जोखिमों का आकलन करने के लिए अपने जटिल गणितीय मॉडल होते हैं। ये सभी तरीके अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली हैं और हमें जटिल प्रणालियों को समझने में मदद करते हैं।
निश्चित रूप से, लेकिन लेखक हमें आगाह भी करते हैं कि इन तरीकों की अपनी सीमाएं हैं। पहली बात, ये सभी मॉडल कुछ मान्यताओं अजम्पशंस पर आधारित होते हैं। अगर वो मान्यताएं गलत हुई तो नतीजे भी गलत हो सकते हैं।
अच्छा,
जैसे हमारा समाज या पर्यावरण और इंसानी व्यवहार की अनिश्चितता को मॉडल में शामिल करना बहुत मुश्किल होता है।
तो यहाँ सबक ये है कि विशेषज्ञों के विश्लेषण का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन उसे आंख मूंद कर मान लेना ठीक नहीं। हमें ये भी पूछना चाहिए कि ये विश्लेषण किन मान्यताओं पर आधारित है, इसकी सीमाएं क्या हैं और क्या इसमें उन चीजों को शामिल किया गया है जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं।
अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ मनोविज्ञान का रोल आता है, जोखिम की धारणा, द परसेप्शन ऑफ रिस्क। ये शायद किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सवाल यह है कि क्यों अक्सर आम लोग जोखिम को विशेषज्ञों के आंकड़ों से बिल्कुल अलग तरह से महसूस करते हैं? क्यों कभी कभी लोग कम संभावना वाले जोखिम जैसे हवाई यात्रा से ज्यादा डरते हैं और ज्यादा संभावना वाले जोखिम जैसे सड़क यात्रा को नजरअंदाज कर देते हैं? क्यों?
इसी को समझने के लिए बारूक फिशॉफ और उनके सहयोगियों ने साइकोमेट्रिक पैराडाइम नाम का एक ढांचा विकसित किया। ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मूल विचार सरल है। उन्होंने पाया कि लोग जोखिम का आकलन सिर्फ संभावना इनटू परिणाम के आधार पर नहीं करते, बल्कि जोखिम की कुछ खास विशेषताओं के आधार पर करते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली है भयानक जोखिम, ड्रेड रिस्क। अगर किसी जोखिम के परिणाम बहुत विनाशकारी हों, लोगों के नियंत्रण से बाहर हों, अनैच्छिक हो यानी लोगों ने उसे चुना न हो, और घातक हो जैसे परमाणु दुर्घटना या कोई बड़ा आतंकवादी हमला, तो लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, भले ही आंकड़ों के हिसाब से उसकी संभावना बहुत कम क्यों न हो।
बिल्कुल।
अगर कोई जोखिम नया है, वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह समझा नहीं गया है, जिसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते बल्कि सालों बाद सामने आते हैं, जैसे कि कुछ नई तकनीकों, शुरुआती दिनों में GMO या मोबाइल रेडिएशन को लेकर चिंताएं, तो लोग उसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, भले ही विशेषज्ञ कहें कि डरने की बात नहीं है।
और इसके साथ ही हमारी अपनी सोच के कुछ पूर्वाग्रह कॉग्निटिव बायसेस भी काम करते हैं, जो हमारे जोखिम के अंदाजे को गड़बड़ा देते हैं। जैसे एक है उपलब्धता अनुमान, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है कि जो घटना हमें आसानी से याद आ जाती है, शायद इसलिए कि मीडिया में उसकी बहुत चर्चा हुई हो, जैसे कोई विमान दुर्घटना, हमें लगता है कि वो ज्यादा आम है, भले ही आंकड़े कुछ और कहते हों।
हाँ, ये तो होता है।
दूसरा है आशावाद पूर्वाग्रह, ऑप्टिमिज्म बायस। ये मानना कि हाँ, खतरा तो है पर यह मेरे साथ नहीं होगा। ये हमें सीट बेल्ट लगाने या हेलमेट पहनने जैसे सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे लेखक बार बार जोर देकर कहते हैं, वो ये कि आम जनता का जोखिम को अलग तरह से देखना सिर्फ उनकी गलती या तरकीनता नहीं है। अक्सर लोग जोखिम का मूल्यांकन करते समय उन पहलुओं पर ध्यान दे रहे होते हैं जिन्हें विशेषज्ञ अपने मॉडल्स में शामिल नहीं करते हैं, जैसे क्या ये जोखिम न्यायपूर्ण है, क्या इसका बोझ समाज के कुछ ही वर्गों पर पड़ रहा है, क्या इस जोखिम को लाने वाली संस्था पर हमें भरोसा है, क्या हमारे पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प है। ये सब वैध चिंताएं हैं।
और यहीं से बात आगे बढ़ती है जोखिम संचार, रिस्क कम्युनिकेशन की, यानी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच जोखिम के बारे में बातचीत कैसे हो। लेखक पुराने मॉडल, जिसे डेफिसिट मॉडल कहा जाता है, की कड़ी आलोचना करते हैं। ये मॉडल मानता था कि जनता अज्ञानी है, डेफिसिट यानी कमी है, और विशेषज्ञों का काम बस उन्हें सही जानकारी, तथ्यों से भर देना है, जिसके बाद वो सही नजरिया अपना लेंगे।
हाँ, और अनुभव बताता है कि ये तरीका बुरी तरह नाकाम रहा है। ये अक्सर अहंकारी लगता है, लोगों में अविश्वास पैदा करता है और उनकी वास्तविक चिंताओं को खारिज कर देता है।
बिल्कुल। इसके बजाय लेखक एक दो तरफा सहयोगात्मक संवाद, टू वे कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन का प्रस्ताव रखते हैं। इसका लक्ष्य किसी को अपनी बात मनवाना, पर्सुएड नहीं, बल्कि आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना होना चाहिए।
इसके लिए कुछ सुनहरे नियम भी सुझाए गए हैं। पहला, अपने श्रोताओं को जाने, उनकी पहले से क्या मान्यताएं हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनके मानसिक मॉडल क्या हैं।
हाँ।
दूसरा, पूरी तरह ईमानदार और पारदर्शी रहें, साफ बताएं कि क्या पता है, क्या नहीं पता है और कहां कहां अनिश्चितताएं हैं। तीसरा, जोखिम को सिर्फ आंकड़ों में न बताएं, बल्कि अलग अलग तरीकों से समझाएं, तुलनाओं का इस्तेमाल करें, कहानियों का, तस्वीरों का।
सही कहा।
चौथा, सिर्फ तथ्यों पर नहीं बल्कि साझा मूल्यों, शेयर्ड वैल्यूज पर भी ध्यान केंद्रित करें।
ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे करना, हाँ, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे विश्वास बनाया जा सकता है। और अंत में किताब बात करती है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट की। ये अब व्यक्तिगत या संवाद के स्तर से ऊपर उठकर सामाजिक और नीतिगत स्तर की बात है। समाज के तौर पर हम जोखिमों को कैसे नियंत्रित करते हैं, नियम कैसे बनाते हैं।
यहाँ नैतिक और राजनीतिक सवाल बहुत गहरे हो जाते हैं। कौन तय करेगा कि कौन सा जोखिम स्वीकार्य है और कौन सा नहीं, और जोखिम का बोझ और फायदा समाज में कैसे बटेगा। यहाँ दो मुख्य दर्शन या सिद्धांत टकराते हुए दिखते हैं। एक है एहतियाती सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर किसी गतिविधि से गंभीर नुकसान का खतरा है तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए और उसे रोकने या सीमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, भले ही हमारे पास उस नुकसान का 100% वैज्ञानिक सबूत ना हो। मतलब शक का लाभ सुरक्षा को मिलना चाहिए।
और दूसरा है लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये जोखिमों को उनके संभावित आर्थिक या सामाजिक लाभों के बरक्स तौलने की कोशिश करता है। ये पूछता है कि क्या किसी जोखिम को कम करने में लगने वाली लागत उससे मिलने वाले फायदे से ज्यादा तो नहीं है।
लेखक किसी एक सिद्धांत को सही या गलत नहीं ठहराते। उनका कहना है कि जोखिम प्रबंधन का कोई एक सर्वोत्तम तरीका नहीं है। ये संदर्भ पर निर्भर करता है, समाज के मूल्यों पर निर्भर करता है, और इसे एक खुली लोकतांत्रिक बहस के जरिए तय किया जाना चाहिए।
हाँ, ये कोई गणितीय सवाल नहीं है जिसका एक सही जवाब हो, बल्कि एक लगातार चलने वाली सामाजिक बातचीत है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण विषय या संदेश उभर कर सामने आते हैं। अगर हमें इस किताब से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली
और थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है, जोखिम कोई वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं बल्कि एक सामाजिक निर्माण है। हम जिसे जोखिम कहते हैं उसकी परिभाषा और उसे मापने का तरीका हमारे मूल्यों, हमारी संस्कृति और हमारी राजनीति से तय होता है। एक ही चीज, मान लीजिए एक नई फैक्ट्री किसी के लिए तरक्की और रोजगार का प्रतीक हो सकती है और किसी के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य का खतरा, दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं।
दूसरी अहम बात जो इसी से जुड़ी है, विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच का फासला वास्तविक है और दोनों के नजरिए में कुछ न कुछ सच्चाई है। जनता की चिंताएं जैसे डर, अनिश्चितता, अन्याय का एहसास, इन्हें सिर्फ जानकारी की कमी या तर्कहीनता कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। वे अक्सर जोखिम की एक ज्यादा व्यापक परिभाषा को दर्शाती हैं, जिसमें सिर्फ मौत या बीमारी के आंकड़े नहीं बल्कि नियंत्रण, भरोसा और बराबरी जैसे मुद्दे भी शामिल होते हैं। हमें इन चिंताओं को सुनना और समझना होगा।
तीसरा बड़ा सबक, मात्रात्मकता यानी नंबरों और आंकड़ों की अपनी सीमाएं हैं। संख्याएं हमें सटीकता का भ्रम दे सकती हैं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताती। सारे मॉडल मान्यताओं पर टिके होते हैं और अक्सर अप्रत्याशित या उन चीजों को पकड़ नहीं पाते जिन्हें मापना मुश्किल है, जैसे डर या विश्वास। कभी कभी कहानी या लोगों का अनुभव आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है।
चौथा, मनोविज्ञान बहुत मायने रखता है। हमारी सोचने की प्रक्रियाएं, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी भावनाएं, ये सब प्रभावित करते हैं कि हम जोखिम को कैसे देखते हैं और उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इन मनोवैज्ञानिक कारकों को समझना बेहतर फैसले लेने की दिशा में पहला कदम है, चाहे वो शेयर बाजार में निवेश का फैसला हो या अपनी सेहत से जुड़ा कोई निर्णय।
पांचवा, संचार एक तरफा भाषण नहीं बल्कि दो तरफा संवाद है। प्रभावी जोखिम संचार सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है बल्कि सुनने, समझने और विश्वास बनाने के बारे में है। इसका लक्ष्य सहमति थोपना नहीं बल्कि आपसी समझ तक पहुंचना होना चाहिए। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों से लेकर बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं तक हर जगह लागू होता है।
और शायद सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, विश्वास ही सब कुछ है। अंततः लोग किसी जोखिम को स्वीकार करेंगे या नहीं, या किसी सुरक्षा उपाय को अपनाएंगे या नहीं, ये अक्सर आंकड़ों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें जानकारी देने वाले स्रोत पर या जोखिम को प्रबंधित करने वाली संस्था पर कितना भरोसा है।
हाँ बिल्कुल, एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ विचारों को अगर हम फिर से देखें।
हाँ, जैसे एक विचार था, जोखिम को परिभाषित करना शक्ति का कार्य है। क्या मापना है, क्या शामिल करना है, ये तय करता है कि किसकी चिंताओं को वैधता मिलती है। ये कितनी गहरी बात है। यानी जोखिम की परिभाषा तय करना एक तटस्थ वैज्ञानिक काम नहीं बल्कि एक राजनीतिक काम भी है जो तय करता है कि किसकी आवाज सुनी जाएगी और किसकी नहीं।
बिल्कुल। और दूसरा विचार जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, जनता की चिंताएं केवल ठीक की जाने वाली त्रुटियां नहीं है, वे अक्सर विशेषज्ञों द्वारा उपयोग की जाने वाली परिभाषा से अधिक समृद्ध जोखिम परिभाषा दर्शाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि लोगों के डर और आपत्तियों को सम्मान दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि उनमें अक्सर वैध मुद्दे छिपे होते हैं जिन्हें विशेषज्ञ नजरअंदाज कर सकते हैं।
संवाद पर भी एक अहम विचार था, प्रभावी जोखिम संचार बोलने से नहीं सुनने से शुरू होता है। इसका उद्देश्य सहमति प्राप्त करना नहीं बल्कि साझा समझ बनाना है।
आज के दौर में जहां ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है, ये सिद्धांत कितना प्रासंगिक है। हमें बात करने से पहले सुनना सीखना होगा।
और दो और विचार जो यथार्थवादी नजरिया देते हैं। पहला, पूर्ण सुरक्षा संभव नहीं है लेकिन बेहतर जोखिम प्रबंधन संभव है। ये हमें परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। जोखिम हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम उसे खत्म नहीं कर सकते पर हम उसे बेहतर ढंग से समझ और संभाल सकते हैं।
और आखिरी, सबसे खतरनाक जोखिम वो हो सकते हैं जिन्हें हम खोज नहीं रहे हैं। ये हमें अज्ञात, अनदेखे, उभरते हुए जोखिमों के प्रति विनम्र और सतर्क रहने की चेतावनी देता है। हमें हमेशा इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि कल कोई ऐसा खतरा सामने आ सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था।
ये सब तो बहुत दिलचस्प और सोचने वाली बातें हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हम इन सब विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं।
इनका मतलब व्यावहारिक उपयोग क्या है?
कई तरीकों से, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य निर्णयों को लें। जब डॉक्टर कोई इलाज या टेस्ट सुझाते हैं तो सिर्फ सफलता या खतरे के आंकड़ों पर ही न टिकें। सोचें कि आपके लिए जीवन की गुणवत्ता का क्या मतलब है, आपके व्यक्तिगत मूल्य क्या हैं। डॉक्टर से सवाल पूछें, अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं के बारे में खुलकर बात करें। ये किताब हमें बेहतर सवाल पूछने में मदद करती है।
हाँ, या फिर वित्तीय योजना के बारे में सोचें। क्या हम शेयर बाजार की रोज की उथल पुथल जो मीडिया में छाई रहती है, उपलब्धता अनुमान पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं? या क्या हम सोचते हैं कि हमारे निवेश में तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, आशावाद पूर्वाग्रह? ये किताब हमें अपने इन पूर्वाग्रहों को पहचानने और ज्यादा संतुलित लंबी अवधि की सोच अपनाने में मदद कर सकती है।
और कामकाज की जगह यानी व्यावसायिक संदर्भ में भी ये बहुत प्रासंगिक है। अगर कोई कंपनी नई तकनीक ला रही है या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है तो सिर्फ तकनीकी सुरक्षा या मुनाफे पर ध्यान देना काफी नहीं है। कर्मचारियों, ग्राहकों और स्थानीय समुदाय की चिंताओं को सुनना, समझना और उनसे ईमानदारी से संवाद करना जरूरी है। इससे विश्वास बनता है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए लंबे समय में सबसे बड़ी पूंजी है।
और एक नागरिक के तौर पर मीडिया की खपत में भी, खबरें अक्सर उन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देती हैं जो नाटकीय और डरावनी हों, भले ही वो बहुत दुर्लभ हों। हमें थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया अपनाना चाहिए। जब समाज में किसी नई तकनीक, जैसे आजकल AI को लेकर बहस है, या सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति जैसे वैक्सीन पर चर्चा हो, तो हमें सिर्फ एक पक्ष की नहीं सुननी चाहिए, बल्कि तकनीकी तर्कों के साथ साथ लोगों की चिंताओं और मूल्यों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए।
यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश में भी ये सिद्धांत लागू होते हैं। माता पिता हमेशा बच्चों को खतरों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किताब हमें सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कहीं हम जरूरत से ज्यादा सुरक्षा ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में उन्हें जरूरी अनुभव हासिल करने, जोखिम लेना सीख लें और आत्मनिर्भर बनने से रोक तो नहीं रहे। सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे खोजा जाए, ये एक सवाल है।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से अगर एक सबसे बड़ी सीख लेनी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए शायद ये है कि जोखिम को समझना और संभालना सिर्फ इंजीनियरों या वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। और इसके लिए हमें सिर्फ दिमाग, तर्क, आंकड़े ही नहीं, बल्कि दिल, भावनाएं, मूल्य, सहानुभूति का भी इस्तेमाल करना होगा। ये डेटा और संवाद विज्ञान और मनोविज्ञान का संगम है।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बात यह एहसास है कि जोखिम को लेकर अलग अलग नजरिए होना स्वाभाविक है, और अक्सर हर नजरिए में कुछ न कुछ सच्चाई होती है। विशेषज्ञ बनाम आम जनता की लड़ाई में किसी एक को सही और दूसरे को गलत साबित करने के बजाय लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम एक ऐसी प्रक्रिया बनाएं जहां सभी आवाजों को सुना जाए, समझा जाए और फैसले लेने में शामिल किया जाए। ये ज्यादा मुश्किल रास्ता है, पर शायद ज्यादा प्रभावी और न्यायपूर्ण भी।
बिल्कुल, ये किताब हमें अनिश्चितता से भरी दुनिया में थोड़ा ज्यादा समझदारी से जीने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जोखिम से डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। और शायद अंत में यही कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जोखिम जोखिम को ठीक से न समझना ही है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।